ध्रुव और तारा इस वक्त गाड़ी में थे। तारा के घर पर वायु से मिलने के बाद ध्रुव काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। वो कभी तारा को ये जता रहा था कि वो उससे बहुत नफरत करता था, तो कभी तारा को वायु के साथ सोचकर ही वो गुस्से से भर उठता था। ध्रुव भले ही अपने मुंह से कुछ न कहे, पर तारा को समझ आ गया था कि ध्रुव का गुस्सा इस वजह से है कि वो चाह कर भी खुद को तारा से प्यार करने से नहीं रोक पा रहा है। आज भी उसके दिल में तारा के लिए फीलिंग्स थीं। जैसे ही तारा को इसका एहसास हुआ, उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। वो मन ही मन ये सोच चुकी थी कि अब वो ध्रुव को खुद से दूर नहीं जाने देगी। इस बार गाड़ी ध्रुव ड्राइव कर रहा था और वे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। वे मैप्स जो उन्हें मौलिक से मिले थे, उनको ध्रुव ने गाड़ी के लॉकर में रख दिया था। तारा का ध्यान खिड़की से बाहर की तरफ था। तभी उसने देखा कि गाड़ी की स्पीड धीरे हो रही थी, जबकि ध्रुव इतना धीरे ड्राइव नहीं करता था। उसने जल्दी से ध्रुव की तरफ देखा तो वो काफी बेचैन नजर आ रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। अगर तुम ड्राइव नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर लेती हूँ, तारा ने काफी नरम लहजे में पूछा। उसे लगा कि ध्रुव उससे बहस करेगा या कोई जवाब ना देकर चुपचाप ड्राइव करने लगेगा, लेकिन ध्रुव ने गाड़ी रोक दी थी। वो बिना कुछ बोले बाहर निकला। उसका इशारा समझकर तारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई थी और ध्रुव पैसेंजर सीट पर था। तारा को यही लग रहा था कि उसके घर पर हुए ड्रामे के बाद ध्रुव से अच्छा खासा सुनने को मिलेगा। ना जाने उसे ध्रुव से कितने ताने सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ड्राइव करते हुए तारा बार बार चिंता भरी निगाहों से ध्रुव की तरफ देख रही थी, जिसका एक हाथ उसके पेट पर था। क्या तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तारा ने धीमी आवाज में पूछा। हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, मैं मेडिसिन ले लूंगा, जवाब में ध्रुव ने इतना ही कहा। उसकी आवाज से ही उसके दर्द का पता चल रहा था। ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से पेट दर्द होने लगा, तारा ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा। तुम्हारी मेहरबानी से कुछ भी नहीं, वैसे भी मौलिक सर को तुम्हें खाना खिलाने और पैम्पर करने में ज्यादा इंटरेस्ट था, मैंने सोचा कि क्यों किसी की फैमिली टाइम में दखल देना, ध्रुव ने तंज भरे लहजे में कहा। एक तो उसे दर्द हो रहा था, ऊपर से तारा के सवाल उसे और इरिटेट कर रहे थे। उसकी बात सुनकर तारा ने एक झटके में ब्रेक लगाए। ध्रुव ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, इस दर्द से मेरी जान नहीं जाने वाली, लेकिन टॉर्चर करने का अच्छा तरीका निकाला है, गाड़ी स्टार्ट करो। तारा तुरंत होश में आई और उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। तारा इतना फास्ट ड्राइव कर रही थी कि ध्रुव को खुद को संभालने के लिए गाड़ी के स्टैंड को पकड़ना पड़ा। वहीं तारा को भी याद आया कि सुबह युग पर अटैक होने की खबर सुनकर वे दोनों अस्पताल भाग आए थे। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वे पूरे दिन अस्पताल में थे और डिनर के वक्त मौलिक के घर पर सिर्फ तारा ने ही खाना खाया था। पूरे दिन से ध्रुव बस कॉफी पिए जा रहा था। फॉर गॉड सेक थोड़ा धीरे ड्राइव करो तारा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी जरूर है, लेकिन मैं स्ट्रेचर पर भी नहीं जाना चाहता। तुम क्या चाहती हो कि और लोग हमें हॉस्पिटल लेकर जाएं? ध्रुव झुंझलाकर बोला। मैं बस अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हैं, और तुम अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करो, इससे तुम्हें दर्द कम महसूस होगा। तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ रात बिताने के बाद अगली सुबह ही मैंने किसी और को शादी के लिए हाँ कह दिया, जबकि उस वक्त तो तुम मेरी सच्चाई भी नहीं जानते थे और मुझसे प्यार करते थे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तुम्हें परेशान नहीं कर रहा कि तुमसे प्यार होने के बावजूद मैंने वायु से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? तारा लगातार बोले जा रही थी और उसका मकसद ध्रुव के दर्द से उसका ध्यान हटाना था, लेकिन उसकी बातें सुनकर ध्रुव को और गुस्सा आने लगा। फिलहाल मेरे दिमाग को तुम्हारे सवाल और ये वाहियात बातें ज्यादा इरिटेट कर रही हैं, अपना मुंह बंद रखो, ध्रुव ने चिल्लाकर कहा। इसी के साथ तारा को एहसास हुआ कि वो सच में ज्यादा बोल गई थी। उसने गहरी सांस ली और ड्राइव करना जारी रखा। पता नहीं मैंने इतने आउट एरिया में घर लेने की क्या जरूरत समझी, क्यों ना हम नियर बाय हॉस्पिटल में चलें, तारा ने ध्रुव की तरफ देखकर पूछा। मुझे मामू के हॉस्पिटल में डैड के पास जाना है, समझ आ गया तुम्हें? अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा, चाहे फिर मुझे खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, ध्रुव दांत पीसते हुए बोला। इसी के साथ तारा बिल्कुल चुप हो गई थी। तारा के बिल्कुल चुप हो जाने पर ध्रुव को और ज्यादा चुभन महसूस हो रही थी। उसने पीछे की तरफ देखा तो गाड़ी के मिनी रेफ्रिजरेटर में बियर की कैंस रखी हुई थी। ध्रुव ने उन्हें लेना चाहा पर तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तुमसे तुम्हारा दर्द हैंडल नहीं हो रहा है और पीने के बाद तो तुम और भी ज्यादा पागल हो जाते हो, चुपचाप बैठे रहो, आगे से अपनी गाड़ी में इनके बजाय फर्स्ट एड बॉक्स और कुछ हेल्दी स्नैक्स रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तारा ने उसे घूरते हुए कहा। ये सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुई है और आगे से तुम्हारी एडवाइस मानने से बेटर ये नहीं रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊं ही ना, ध्रुव ने आंखें घुमाकर कहा। फिर तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे मकसद के लिए तुम्हें मेरे साथ ही ट्रैवल करना होगा, तारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। माई बैड लक, ध्रुव ने सिलहिला दिया और वापस अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया।
कुछ ही देर में तारा ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी, जहां सबसे पहले जाते ही वे जनरल फिजिशियन के केबिन में थे। ध्रुव ने तारा को अपने साथ आने से मना कर दिया था, इसलिए तारा हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में ध्रुव के लिए कुछ खाने को देख रही थी। चेकअप के बाद जब ध्रुव युग के कमरे के आगे पहुंचा, तब तारा हाथ में सैंडविच लिए उसके सामने खड़ी हुई थी। तारा ने उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा लो और आगे से मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालना। ध्रुव ने भी बिना नानुकुर किए उसके हाथ से वह सैंडविच ले लिया था और बैठकर खाने लगा। ध्रुव ने टाइम देखा तो रात के लगभग 1 बजने को आए थे, लेकिन युग को अभी होश नहीं आया था। युग के कमरे में उसका ध्यान रखने के लिए पहले से ही नर्स मौजूद थी। जब उसने युग को बेहोशी में बड़बड़ाते और उसकी उंगलियों को हिलते देखा, तो वो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए बाहर आ गई थी। नर्स को कमरे से बाहर निकलते देख ध्रुव जल्दी से खड़ा हुआ और उसके पास जाकर पूछा, क्या डैड को होश आ रहा है? हाँ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको पहले खुद को सैनिटाइज करके चेंज करना होगा। नर्स ने उसे हिदायत दी और फिर वहां से चली गई। ध्रुव और तारा ने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। युग कमरे में अधखुली आंखों के साथ सोया हुआ था। उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो उस पर हमला होने से पहले हुआ था। हाँ, लेकिन उसके सपने में वो अकेला नहीं था जिसे मान्या और प्रतिभा ने चोट पहुंचाई थी। उसके साथ में कृषा भी थी। युग बेहोशी में कृषा का ही नाम बड़बड़ा रहा था, कृष कृष कृष। नहीं, युग के मुंह से हल्की सी चीख निकली और इसी के साथ उसकी आंख खुल गई थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने आसपास देखा तो वो अस्पताल में था। अगले कुछ पलों में युग को याद आ गया था कि उसके यहाँ आने से पहले क्या हुआ था। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। मुझे कृष से मिलना है, युग ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि वो किसी तरह का सपना था, पर फिर भी युग बहुत बेचैन हो रहा था।
इस दौरान डॉक्टर और नर्स युग के रूम में आ गए थे। डॉक्टर ने कुछ इनिशियल चेकअप करने शुरू कर दिए थे। युग शांति से सब कुछ देख रहा था। आपकी हार्टबीट स्टेबल है, बाकी बीपी थोड़ा हाई है। काम डाउन मिस्टर राणा, आप ठीक हैं, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे मेरी वाइफ से मिलना है, वो यहीं बाहर होगी, प्लीज आप कृषा को अंदर बुला दीजिए, युग बोला। डॉक्टर ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया। वो अब ठीक था, इसलिए उससे मिलने के लिए कोई भी आ सकता था। डॉक्टर नर्स को वहां पर छोड़कर बाहर निकले। क्या डैड ठीक है? उन्हें देखते ही ध्रुव ने जल्दी से पूछा। हाँ, उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आप उनकी वाइफ को बुला दीजिए, वो सबसे उनसे ही मिलना चाहते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया और फिर वहां से चले गए थे। ध्रुव और तारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने कृषा को अब तक इस बारे में बताया तक नहीं था, जबकि युग होश में आते ही सबसे पहले कृषा को देखना चाहता था। युग की डिमांड सुनकर ध्रुव के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, तो तारा हल्का मुस्कुरा रही थी। उसकी इस हरकत पर ध्रुव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। कृषा कितनी यकी है ना, जो उन्हें मिस्टर राणा जैसे प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। इतनी लंबी बेहोशी के बाद भी उन्हें कृषा को देखना है, तारा ने खोई हुई आवाज में कहा, जैसे वो अपनी दुनिया में गुम हो गई हो। ध्रुव ने उसकी बातें सुनकर आंखें घुमाई और उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर कहा, अपने ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर आओ और ये सोचो कि इतनी रात को मैं कृषा को यहाँ लेकर कैसे आऊं। अभी तो मैंने उन्हें डैड के बारे में कुछ बताया तक नहीं था, तो अब बता दो, वैसे भी वो अब ठीक हैं, तो कृषा इतना ओवररिएक्ट नहीं करेंगी, तारा ने कंधे उचकाकर कहा, जैसे उसने ध्रुव की बड़ी सी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया हो। ओ रियली? ध्रुव तंज भरे लहजे में बोला, ये इतना आसान है तो तुम क्यों नहीं कर लेती? दूसरा, उन्हें बार बार कृषा कहना बंद करो। ठीक है, तुम डैड का ख्याल रखो और मैं इस बीच कृषा को अस्पताल ले आती हूँ। तारा ने तुरंत ध्रुव की बात मान ली थी और जाने के लिए पलटी ही थी कि ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तारा ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव की आंखों में देखा तो उसके सवाल खुद बखुद खत्म हो गए थे। ध्रुव की आंखों के भाव सर्द होने लगे थे। आई डोंट ट्रस्ट यू, स्पेशली मेरी फैमिली के मामले में, ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा। उसका ये बेगानों जैसा बर्ताव देखकर तारा की आंखें नम होने लगी थीं। उसने रुंधे गले से कहा, तुम्हें सच अच्छे से पता है कि वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ऐसा ही समझ लो, हो सकता है कि तुम कृषा के साथ यहाँ आ रही हो और फिर से तुम्हें कोई मैनिपुलेट करने के लिए कॉल करे और तुम मेरी मॉम को नुकसान पहुंचा दो। वैसे भी तुम्हारे अंदर खुद तो इतनी अकल है नहीं जो सही गलत का फर्क कर सको, ध्रुव ने रूखे तरीके से जवाब दिया। तारा ने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली थीं और बिना कुछ बोले बेंच पर जाकर बैठ गई थी। उसे ऐसा लगता था जैसे आजकल ध्रुव मुंह खोलता है तो बस उसे हर्ट करने के लिए। ध्रुव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र फेर ली थी। वैसे भी उसके पास फिलहाल तारा के साथ बहस करने या उसे कुछ साबित करने से ज्यादा जरूरी युग से बात करना था। मैं डैड को सिचुएशन बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे, ध्रुव ने धीरे से कहा और खुद ही युग से मिलने का सोचा। नर्स के इंस्ट्रक्शंस पर वो चेंज करके खुद को डिसइन्फेक्ट करके आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, युग की नज़र सीधे उसके ऊपर गई। क्या तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं कि मुझे कृष से मिलना है? युग ने बिना किसी भाव के कहा। लेकिन ध्रुव ने सफाई देने के लिए बीच में बोलना चाहा। युग ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। उसने उसकी बात को बीच में काटते हुए तेज आवाज में कहा, गेट आउट। युग को इस तरह जिद करते देख ध्रुव ने अपने कदम पीछे ले लिए थे। उसने बेबस निगाहों से एक नज़र युग की तरफ देखा और फिर बाहर आ गया था। बाहर आते ही वो सीधा अर्जुन से जा टकराया था, जो युग के होश में आने की बात सुनते ही उससे मिलने आया था। वो इतने जिद्दी क्यों है? मैंने कृषा को कुछ नहीं बताया है और वो उनसे ही मिलना चाहते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं कैसे उन्हें इस वक्त कॉल करके परेशान कर सकता हूँ? उनके साथ में याशी भी है, ध्रुव ने लाचारी से कहा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, और कृषा को भी पता चलेगा तो वो तुम पर गुस्सा होगी, अर्जुन ने जवाब दिया। क्या आप थोड़ी देर के लिए डैड के पास रह सकते हैं? मैं मॉम को लेकर आ रहा हूँ और मुझे यहाँ किसी पर ट्रस्ट नहीं है, ध्रुव बोला। उसका इशारा तारा की तरफ था, जो उसकी बात सुनकर मन ही मन उसे कोस रही थी। अर्जुन ने उसकी बात पर हामी भरी और तारा के पास आकर बैठ गया था। ध्रुव वहां से चला गया था। तारा की आंखों में आंसू थे और उसने अर्जुन की तरफ देखा। जैसे ही अर्जुन और तारा की आंखें जा टकराईं, तारा ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए थे, तो वहीं अर्जुन भी आंखों में हैरानी लिए उसे देख रहा था। तुम ध्रुव की वाइफ हो, उस रात कृषा पर अटैक करने वाली तुम थी तारा, अर्जुन के मुंह से यही निकला। तारा की नजरें वहीं पर झुक गई थीं, जबकि अर्जुन उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। उन दोनों की बातों और हाव भाव से साफ था कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में प्रतिभा ने अब काफी आराम कर लिया था। रात के 2 बजे के करीब अभय सिंह राणावत की हवेली में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें प्रतिभा को बुलाया गया, और उसके आदमी ही नहीं बल्कि माफिया के वे लोग भी मौजूद थे जो हमेशा से युग के खिलाफ बगावत करना चाहते थे। थोड़ा सा गैप ज्यादा आ गया, इसलिए चैप्टर बढ़ा दिया है। कोई आइडिया है कि अर्जुन और तारा एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं? और लगता है कि अब माफिया वॉर शुरू होने वाली है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगला पार्ट कल या परसों देने की कोशिश करूंगी।